इंग्रेज साक्षी प्रभु की, तुम साक्षी प्रभु की।
ये थोड़ा ये कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद। कृष्णा बहुत अधिक ये हैं, ये होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति उनके बारे में सुनने के लिए तैयार रहता है। अब देखिए, इतना अच्छा पेड़ है, इतनी डार्क छाया है और उसमें हवा भी बह रही है, तो नेचुरल एयर कंडीशन भगवान हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने क्या सुना था, रिपीट करिए पॉइंट्स, मेन हाइलाइट्स, हाईलाइट करिए पॉइंट्स को। हाँ, तो हम गुरु के सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो क्यों हमारे जीवन में किसी एक गाइड की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, और हमसे भी अधिक क्वालिफाइड एक व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने बोला था। कौन थे वो? अर्जुन। हाँ, उन्होंने भी गुरु का आश्रय उनको लेना पड़ा। तो ये अंडरस्टैंडिंग उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है जो इस भौतिक जगत में घूम रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में, जिसको मनुष्य का जीवन मिला है, उसको एक सेंटेंस समझ में आ जाए तो आध्यात्मिक उन्नति में वो अग्रसर हो सकता है। कि यदि मुझे अपने जीवन के सारे समस्याओं को फुल स्टॉप देना है, किसको फुल स्टॉप देना है, लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको फुल स्टॉप देना है, तो मुझे गुरु का आश्रय लेना शत प्रतिशत आवश्यक है। उसमें कोई कोई ये नहीं है, दूसरी बात नहीं है। तो मैंने ये भी चर्चा की थी कि कई बार व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे तो पता चला है, अभी भक्तों के संग में 16 माला जप करना चाहिए और गीता भागवत को पढ़ते रहना चाहिए, तो कृष्ण तो भगवान है, ये मुझे पता चला और मैं खुद पढ़ाई कर सकता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता हूँ, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते भी नरक जाएगा। तो गुरु इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण सर्विस को स्वीकार नहीं करते जब तक मीडियम नहीं हो। कौन नहीं हो बीच में?
माध्यम।
मुझे लग रहा है ये ठीक। तो ये बहुत आवश्यक समझ है कि कोई व्यक्ति ये भी बहाना बना दे, नहीं चलेगा, क्यों क्यों किसी के अधीन होना है कि नहीं। गुरु को जीवन में लाना मीन्स हमें क्या होना, अधीन हो जाना, अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना मीन्स गुरु को स्वीकार करना। अभी भगवान से हम अलग हो गए हैं, अपने स्वतंत्र बनना चाहते हैं हम।
थैंक यू।
तो हमारी समस्या क्या है, हम अपने आप को महान समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। इवन ब्रह्मा को भी मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा भी भगवान कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में आता है मुह्यन्ति यत् सुरया, सुरया मीन्स देवतागण भी मोहित हो जाते हैं, शिव जी है, इंद्र है, ब्रह्मा आदि है, तो वो भी भगवान को समझ नहीं पाते ठीक से। तो हम जो क्षुद्र जीव हैं वो उनमें क्या क्षमता है भगवान को समझने की, तो शास्त्र आदि के द्वारा तो भगवान को जान नहीं सकते। हाँ, क्योंकि शास्त्र किसके समान है, मैंने लास्ट टाइम कहा था सागर के समान है। शास्त्र क्या है, सागर के समान है। तो शास्त्र सागर के भांति है, तो सागर में ये छुपे हुए हैं, रत्न आदि छुपे हुए हैं, और गुरु ही जानते हैं, सार प्रस्तुत करते हैं, शास्त्रों के निचोड़ को प्रदान करते हैं। हाँ, तो हमारे बुद्धि से परे हैं, भगवत तत्व हैं, इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों के लिए दुर्लभ है कृष्ण। मैंने पिछली बार कंक्लूड किया था लेक्चर जिसमें कहा था कि वेद गण भी क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन उनके लिए दुर्लभ है। वेदों के लिए भगवान को समझना दुर्लभ है, लेकिन किन के लिए अदुर्लभ है, भक्तों के लिए। हाँ, भक्तों के लिए सरल है, इसलिए भगवान इनको कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं ए मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानांश ए भक्तास्ते मे भक्त तमामता। ये मे भक्त जना पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मुझे कहता है, हाँ, तो वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन मद भक्तांश ये भक्तां, मेरे भक्तों का जो भक्त है। हाँ, गुरु कौन है, गुरु कौन है, सरल भाषा में जो भगवान का 100% शरणागत भक्त है वही क्या है, गुरु है। क्योंकि भक्तों में जो 26 गुण आते हैं, हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि डिवोटीज का मतलब जिसमें 26 गुण है, 26 क्वालिटीज हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, कृष्ण एक शरणम, कृष्ण के प्रति जो शरणागत है, सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है। ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर हो तो बाकी 25 क्वालिटीज अपने आप उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो सकती है। इसलिए आदि पुराण में भगवान ने बहुत क्लियर लिखा, और इसी कारण से सारे शास्त्र बारंबार इस चीज पर जोर देते, क्यों जोर देते हैं, क्योंकि कलयुग के जीव स्वतंत्र बुद्धि के हैं, और यतोमत ततोपत, हाँ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है। व्यक्ति क्यों यतोमत ततोपत को पकड़ता है कि मुझे जैसा लगता है ना वैसे ही करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं शास्त्रों के आधार या गुरु साधु शास्त्र के बातों के आधार पर करूंगा तो मुझे जो इंद्रिय तृप्ति की फैसिलिटी है, जो मैं संसार में इंद्रियों को उपभोग करना चाहता हूं, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज पर जोर देते हैं शास्त्र, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे, जो आश्रय लेकर भगवान का भजन करता है कृष्ण उसको कभी भी त्याग नहीं कर सकते। बाकी सब मेले अकारणे, बाकी जो भी भगवान के भक्तों का शेल्टर लिए बिना, गुरु को शरणागत हुए बिना, उनका आश्रय लिए बिना भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका जो प्रयास है निष्फल है। तो कृष्ण स्वयं अपने आचरण से जगत में दिखाते हैं, जो परम पुरुष है, सर्व चीजों के ज्ञाता है, लेकिन वो ये जगत में प्रकट होते हैं तो स्वयं सांदीपनि मुनि को आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। इवन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं 520 साल पहले, तो वही चैतन्य महाप्रभु हाँ ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं संसार सागर में गिरा हुआ हूँ, मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूँ, आप मुझे क्या करो इस बहुसागर से निकालो। चैतन्य महाप्रभु गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं। तो ये क्यों? आपने आचार्य प्रभु सिखाए सवारे, क्योंकि शास्त्र गीता और भागवत क्या कहता है, आपने ना कैल धर्म सिखाना ना जाए। जब तक आप खुद नहीं फॉलो करते तब तक आप ये धर्म की जो शिक्षा है दूसरों को प्रदान करने का आपके पास अधिकार नहीं है। आपने ना कैल धर्म सिखाना ना जाए, ये इसे सिद्धांत गीता भागवते गाय और श्रीमद भागवतम और भगवदगीता इसी चीज पर जोर देती है। तो इसलिए भगवान जिनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों को एक आदर्श स्थापित करने के लिए कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इस भव सागर से रियली सिंसियरली निकलना चाहता है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना। जैसे व्यक्ति को लगता है मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक पत्नी का होना या पति का होना, बच्चों का होना, घर का होना, हाँ कितनी सारी चीजों का होना, लेकिन कभी हमें महसूस होता है कि हाँ सही में मेरे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह अज्ञानता के कारण हम समझ नहीं पाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने तब तक कृष्ण भक्ति को प्रकट नहीं किया संसार के सामने जब तक उन्होंने ईश्वरपुरी का आश्रय नहीं लिया, अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लिया। उनको ही उससे भी हमारी परंपरा में जो महान महान आचार्य हुए हैं जिनका हम ये गीत गा रहे हैं आजकल, नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर तो नित्य मुक्त जीव है। दो प्रकार के जीव हैं, एक तो बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव, और एक कौन है, नित्य मुक्त जीव। तो बद्ध जीव तो हम सब हैं, इस संसार में बंध गए हैं भौतिक कलमशों के कारण। लेकिन दूसरे जीव है नित्य मुक्त जीव। नित्य मुक्त जीव भगवान अपने धाम से नित्य बद्ध जीवों को गाइड करने के लिए उनको भेजते हैं। नित्य मुक्त जीव जिनको भगवान के पार्षद कहा जाता है, नित्य संगी कहा जाता है, वो इस संसार में आते हैं और एक सर्वसामान्य व्यक्ति का आचरण करते हुए भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं अपने आचरण आदि से, और भगवत प्रेम का विकास करते हैं। तो ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के विग्रह थे। उनको कोई आवश्यकता नहीं किसी गुरु या किसी के ऊपर डिपेंड होने की, आध्यात्मिक ज्ञान आदि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन उन्हीं के द्वारा हमें सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में आके कहते हैं, जब वो छोटे से बालक ही थे, उनको कहते कि हे नरोत्तम, नरोत्तम तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर जो लोकनाथ गोस्वामी है उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। तो इस प्रकार से इवन नरोत्तम दास ठाकुर जो मुक्त जीव है उनके द्वारा भी भगवान हमें शिक्षा देते हैं। इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में इतने स्थानों में आपको वर्णन प्राप्त होगा, एक वर्णन प्राप्त होगा कि यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा वर्णन मिलेगा आपको कि आपको एन केन प्रकार किसी ना किसी प्रकार से आपको आध्यात्मिक गुरु के शेल्टर में जाना होगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को कहा न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये नर देह ये जो ह्यूमन फॉर्म है ये माध्यम है, ये बड़ा सुलभता से हमें मिला है लेकिन बहुत रेयर चीज है। हमें तो किसी को रेयर महसूस हो रहा है क्या कि बॉडी बड़ा रेयर है? नहीं, रेयर वस्तु तो हमें क्या क्या लगती है इस संसार में, क्या क्या रेयर महसूस होता है बताइए, क्या क्या हमें लगता है कि बहुत रेयर है लाइफ में हमारे, बोले बोले शांति, इंद्रिय तृप्ति के साधन, हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में हम सोचते हैं बहुत रेयर है। हाँ तो भगवान उद्धव को कहते हैं न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान ने भी नहीं बोला बाबा दुर्लभ है, नहीं क्या बोला, सुदुर्लभ, बहुत अधिक रेयर है ये ह्यूमन फॉर्म। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। प्लवम, प्लवम का मतलब है नाव। कि हे उद्धव, इस मनुष्य को ये ह्यूमन फॉर्म बहुत रेयर मिला है और ये शरीर एक नाव के समान है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और इस नाव भव सागर में क्या कर रही है, घूम रही है। तो इस नाव को एक परफेक्ट कैप्टन की आवश्यकता है, तभी वो किनारे में लग सकती है। इसलिए वो कैप्टन कौन है, भगवान कहते हैं गुरु कर्णधारम। कर्णधार होता है ना, किसी टीम का कर्णधार होता है। तो उसी प्रकार से ये बोट जो हमारे पास है, कितने समय के लिए आपके पास बोट है, ये ह्यूमन फॉर्म अनिश्चित, निश्चित समय नहीं है। आप सोचते होंगे मेरे पास रेल भवन में परमानेंट जॉब है, निर्माण भवन में परमानेंट जॉब है। आप परमानेंट रह सकते हो, नहीं, आपको कल का भरोसा नहीं आपका अपने जीवन का। तो उसी प्रकार से ये बोट हमें दी गई है, भगवान ने फैसिलिट की है, जो हमें पार करा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें एक्सपर्ट कैप्टन की आवश्यकता है अपने लाइफ में। हाँ, तभी ये बोट सही ढंग से, सही रूप से, यथावत किनारे में लग सकती है। और वो किनारा है आध्यात्मिक लोक, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। भगवान कहते मयानुकूलेन, मेरे कारण अनुकूल हवा आती है। और वो हवा क्या है, मेरे अनुकूल शास्त्रों के द्वारा दिए गए आदेश, फेवरेबल जो आदेश है भगवान के, उन आदेशों को यदि व्यक्ति फॉलो करता है तो वो सरलता से उसके नाव भव सागर को पार हो सकते। अनुकूल हवा जैसे आ रही है नाव को उसी प्रकार से, नाव को पार होने के लिए ये होता है, एक क्लोथ लगाते हैं, बड़ा सा कपड़ा, तो हवा के कारण वो एक दिशा की ओर जाता है। हाँ, तो उसका जानकारी केवल जो एक्सपर्ट कैप्टन है उसको ही होती है। तो उसी प्रकार से गुरु भी है कर्णधार के रूप में, इतना अच्छा नाव भी हमारे पास है, और भगवान कहते हैं फेवरेबल हवा भी है। क्या है, भगवान के आदेश शास्त्रों के द्वारा। पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा पुमान भवाब्दी। इस भवाब्दी मीन्स इस भव सागर को इतना सब फैसिलिटी मिलने के बाद भी इसको दूसरी ओर जाने के लिए इतनी फैसिलिटी है, फिर भी जो व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठाता उसको आत्महा कहा गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति खुद की आत्महत्या करने वाला है। तो कितना पापी व्यक्ति है जो इतनी सारी सुविधा मिलने के बाद भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है, जाना नहीं चाहता, इसी संसार में डूबना चाहता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा भी आए थे इंद्र के पास जब वो सुअर बने थे, तो उन्होंने कहा चलो चलो आपके लिए सिंहासन खाली है, स्वर्ग के राजा का पद। वो कहते नहीं नहीं, मैं इधर ही, इतना सुअर के इसमें अच्छा लग रहा है मुझे, मल खाना, गंदगी में सोना, यही ठीक है मेरे लिए। तो इतनी सुविधा प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य जो बुद्धिमान नहीं है वही इस संसार में सड़ना चाहेगा। तो इसी कारण से भगवान इस चीज के लिए हमें बारंबार प्रोत्साहित करते हैं और आगे कहते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्येत। कि तस्मात गुरुम प्रपद, तस्मात इसलिए क्या करो, गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्येत में शरणागत हो जाओ, इसी कारण से शरणागत हो जाओ। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव साभिगच्छेत, इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक समझ प्राप्ति के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, दिव्य विज्ञान को समझने के लिए। इसी कारण से शास्त्र जोर देते हैं कि एक व्यक्ति को गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और उनसे दीक्षा के लिए याचना करनी चाहिए। क्योंकि हरि भक्ति विलास में कहा गया है अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्व निरर्थका। जो अदीक्षित है, जो गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है, उनके शरणागत नहीं है, उसके सारे कार्यकलाप कैसे हैं, व्यर्थ हैं। सर्व निरर्थका पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। तो जो व्यक्ति गुरु की शरणागत नहीं होता या नहीं होना चाहता, उस व्यक्ति को क्या है, नेक्स्ट पशु योनिम अवाप्नोति, पशु का जीवन मिलना निश्चित है। पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। तो ये कोई आध्यात्मिक जीवन ये नहीं है, खेलकूद नहीं है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, गंभीर व्यक्ति के लिए है। और इसके लिए हमें गंभीर होना होगा, और गंभीरता का पहला लक्षण यही है कि वो व्यक्ति पहला कदम उठाएगा कि मुझे आध्यात्मिक गुरु के शेल्टर में जाना है, मुझे आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय लेना है। इसी कारण से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अतो गुरु प्रणमैवम सर्वस्वम विनिवेद्य च ग्रहणीयाद वैष्णवम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानता। इसी कारण से व्यक्ति को सर्वस्व का मतलब है मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर, कि सर्वस्व को गुरु के चरणों में समर्पण करना होगा। सर्वस्व क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम अपने अपनी चीज को क्या समझते हैं, अपनी कौन सी चीज है जिससे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं? ये शरीर है। इसलिए सर्वस्व तुम्हारा चरण संपिया, आपके चरणों में मैं सर्वस्व देना चाहता हूँ, अपना मन, अपना शरीर, अपनी वाणी, अपनी स्वतंत्रता, मेरा फॉल्स ईगो, ये सब चीजें देना चाहता हूँ। और इस प्रकार से गुरु के चरणों में अपने शरीर मर वाणी को शरणागत करके व्यक्ति को वैष्णवम मंत्रम ग्रहणीयाद वैष्णवम मंत्र, कुछ भी मंत्र स्वीकार करने के लिए शास्त्र नहीं कह रहे। जैसे कई ऐसे में महा हजारों क्राउड इकट्ठा करने के लिए करने वाले बाबाज हैं, स्वामीज हैं, गुरुज हैं, वो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बुलेट प्रूफ वो लेक्चर भी देंगे तो शीशा बुलेट प्रूफ होता है, इतना भय है। अभय चरण भगवान का दूसरा नाम क्या है? अभय चरण, उनका शरण लिया है लेकिन डर कितना है कि नहीं? तो लेकिन ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े जो गुरुज है, साधुज है, वो ओपनली दे देते हैं दीक्षा, खड़े हो जाओ, किसको किसको दीक्षा चाहिए, कौन कौन मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है, अब कौन सा मंत्र आपको अच्छा लगता है, 20 मंत्र दे देंगे, और ठीक है आपको दुर्गा का अच्छा लगता है जब करो, आपको शिव जी का अच्छा लग रहा है ठीक है, आपको संतोषी माता अच्छी लगती है ठीक है, हर शनिवार को हनुमान का सेवा करते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं ऐसा जो बाजार है इससे उद्धार होने वाला नहीं है। हमें वैष्णव मंत्रम ग्रहणीयाद, वैष्णव मंत्र, और वैष्णव कौन है? वैष्णव मीन्स कौन? जो विष्णु के डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त हैं। अभी आजकल कोई व्यक्ति जब भक्त लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन आदि से तो पूछते हैं आप कौन हैं, तो हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। कौन से भगवान के भक्त हैं? ये कलियुगा में हुआ है, पहले युगों में ये सब नहीं था। भगवान शब्द का मतलब ही था कृष्ण, विष्णु, राम, नरसिंह, वराह, वामन आदि। कलियुगा में ये सब हो गया, ये क्वेश्चंस बन गए, भगवान मतलब कौन से भगवान। तो ये अगले युगों में नहीं, दैवन श्रीमद भागवतम में शुकदेव गोस्वामी हमेशा भगवान भगवान कहते हैं, तो कभी परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा कि कौन से भगवान की बात कर रहे हो, भगवान तो बहुत सारे, भगवान बहुत सारे नहीं है, भगवान को कितने है? एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान वो कृष्ण है। इसी कारण से व्यक्ति को वैष्णव मंत्र की दीक्षा के लिए अप्रोच करना होगा। हाँ, तो वैष्णव मंत्रास जो प्रामाणिक चार वैष्णव संप्रदाय है उन चार संप्रदायों में ही प्राप्त होते हैं, और उन्हीं के द्वारा व्यक्ति प्राप्त किए हुए उन वैष्णव मंत्रों को स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर पाता है। तो मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कारण से श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि दीक्षा का मतलब क्या है वास्तव में। हाँ, तो थोड़े समय के लिए हम समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली दीक्षा का मतलब ही क्या है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निष्ठावान है और सही में आध्यात्मिक उन्नति का अभिलाषी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ में वो उन्नत होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रगति के लिए उन्होंने जो 64 प्रैक्टिस बताई है अंगाज, उनमें से जो 5 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब शुरुआत ही इन 5 से होती है आध्यात्मिक जीवन की। तो वो 5 चीजें क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं गुरु पादाश्रय तस्मात, कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआती होती है जब व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय लेता है। फर्स्ट स्टेप ये नहीं है और बाकी जितना मर्जी वो बना रहा है, अपना महल बना रहा है, वो टिकने वाला नहीं है। आपने क्या नहीं बनाया, सबसे पहले क्या कहते हैं, नाव, नींव, नींव नहीं डाली है। आप बहुत बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करते हो, अध्यात्म के निगुड़ चीजों की चर्चा करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं, पांडित्य बहुत होता है उनके पास, लेकिन वो शरणागत नहीं होते, क्योंकि शरणागति में क्या है, फॉल्स ईगो क्रश होता है, जो मिथ्या अहंकार है, मैं, अहम और मैं की जो भावना है हमारे अंदर, वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है, कष्ट पहुंचता है हमें। तो इसलिए पहली जो पहला जो धरातल है, पहला जो स्टेप है, रूप गोस्वामी कहते हैं, वो है गुरु पादाश्रय तस्मा, गुरु के चरणों का आश्रय लेना। और दूसरा क्या है, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उतना ही इनफ नहीं है, उसके लिए आगे बढ़ना होगा, कृष्ण दीक्षा आपको प्राप्त करनी होगी। कृष्ण दीक्षा, जैसे हमने कहा वैष्णव मंत्र, तो उसी प्रकार से भगवत दीक्षा को प्राप्त करना होगा, कृष्ण दीक्षादि। और तीसरी चीज है शिक्षणम, ये इनफ नहीं है, क्या करना होगा आपको, सीखना होगा, लर्न करना पड़ेगा। ये तीसरी चीज रूप गोस्वामी कहते हैं। और चौथी चीज है विश्रम्बेन गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तमानम, विश्रम्बेन गुरु सेवा, इन तीन चीजों के साथ साथ चौथी चीज है बड़े आदर, विश्रम्बेन मीन्स आदर सम्मान के साथ गुरु की सेवा करनी होगी। और चौथी पांचवी चीज है साधु वर्तमान वर्तमान, कि जो महान महान आचार्य गण है, साधु है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को अनुभव करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा किसी ने अपने हृदय में रखी है, तो उसको ये चीज, ये स्टेप्स से आगे बढ़ना होगा। अन्यथा उसके लिए आध्यात्मिक जीवन एक सपना है, आध्यात्मिक जीवन उसके लिए कठिन है। इसी कारण से, क्योंकि कृष्ण तो भक्ति भवन में रहने वाले स्वामी हैं। कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, उनका जो महल है उसका नाम ही है भक्ति भवन। तो भक्ति भवन, क्योंकि भगवान ने कितने सारे स्थानों में इसी की चर्चा किया, भगवद गीता तो भरी हुई है, भक्त्या माम अभी जानाती, भगवान ने कहा भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हैं। अर्जुन क्यों मैंने तुम्हें भगवद गीता बोली, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम है तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं इस परम रहस्य को बता रहा हूँ। और भगवान श्रीमद भागवतम में भी वही चीज उद्धव को कहते हैं, उद्धव को कहते हैं न साधयति माम योगो, हे उद्धव मुझे इस नाना प्रकार के जो अष्टांग योग है, ज्ञान योग आदि है, इनके द्वारा समझा नहीं जा सकता, न सांख्य धर्म उद्धवा, हे उद्धव सांख्य के द्वारा भी, जो सांख्य फिलोसफी है जिसमें इस भौतिक जगत के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उस फिलोसफी के द्वारा भी मुझे समझा नहीं जा सकता। न स्वाध्याय तपस त्यागो, स्वाध्याय कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे बस मैं अध्ययन की करते रहूंगा, बाकी किसी भक्ति वगैरह की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो भावुक व्यक्तियों के लिए है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो बस अपना करतल लेते हैं और गाते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवान ने कहा न स्वाध्याय तपस त्यागो, ना तप के द्वारा न त्याग के द्वारा, यथा भक्तिर ममोर्जित, यथा भक्तिर जितना भक्ति के द्वारा मुझे जीत सकते हो, मुझे आप कंट्रोल कर सकते हो, मुझे अपना बना सकते हो, बाकी इन चीजों के द्वारा असंभव है। तो ये भगवान भक्ति रूपी महल में अपने पैलेस में रह रहे हैं, और भक्ति का महल का जो दरवाजा है वो कौन है, आध्यात्मिक गुरु है। अभी आपके लिए दरवाजा बंद है तो आप कैसे एंट्री करोगे, तो एंट्री गेट कौन है, आध्यात्मिक गुरु है, जिनके द्वारा हम अंदर घुस सकते हैं। इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं, दीक्षा का मतलब ही यही है। जीव गोस्वामी कहते हैं दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्, दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञान देना, दे का मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना या दिव्य ज्ञान देना, और क्षा का मतलब है क्षति, क्षति को क्या कहेंगे, और डिस्ट्रॉय करना, अज्ञान की क्षति जिसको दीक्षा कहा गया है। तो दिव्य ज्ञान और अज्ञान की क्षति तस्मा दीक्षेति सा प्रोक्ता देश कैस तत्व कोविदा। कोविदा मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, आध्यात्मिक शास्त्रों के जो विज्ञाता है, ज्ञाता है, वो इस प्रकार से दीक्षा को समझाते हैं। दिव मीन्स दिव्य ज्ञान और क्षा मीन्स अज्ञान की क्षति। तो अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान यही है, देहात्म बुद्धि, देह को आत्म मानना, देह को आत्मा मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। लेकिन अपने अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण मैं इस शरीर को अपना मान रहा हूं, इसी को आत्मा समझ रहा हूं, आत्मा का मुझे ज्ञान ही नहीं है, ये अज्ञान है। तो दीक्षा का मतलब ये कि व्यक्ति दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है, दिव्य ज्ञान को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के कारण उसका जो कार्यकलाप है वो कैसे होते हैं, आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। उसका थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है, वो सारे आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। हाँ, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या है? सोचना, किसके बारे में सोचना? हाँ, कृष्णा के बारे में सोचना। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो इस प्रकार से दीक्षा के बाद व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है तो आध्यात्मिक धरातल पर कार्य करने लगता है। क्योंकि दीक्षा का मतलब ही है, जैसे हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते तो माँ के साथ हमारा कनेक्शन होता है। किससे कनेक्ट होते हैं हम माँ से? नाल, क्या कहते हैं, नाल से, है कि नहीं? हाँ, तो नाल की रस्सी से हम बंधे रहते हैं, इसलिए तो अटैचमेंट क्यों है हमें, माँ से है, बाप या पिताजी से है, क्यों? क्योंकि अटैचमेंट ये बंधा हुआ है, गांठ। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस गांठ को काटते हैं। क्या ऐसा कोई है कि जो उसी के साथ जी रहा है, अपने माँ के साथ नहीं, काट देते हैं उसको। तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा है ये शरीर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और उसकी ये रस्सी कौन सी है? फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मीन्स मिथ्या अहंकार की ये रस्सी है। तो इसको अभी, ये कोई डॉक्टर तो नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल तो नहीं मिलेगा इसको, और ये फॉल्स ईगो दिखता भी नहीं है, तो उसके लिए ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। इसलिए वो एक्सपर्ट डॉक्टर साधु हैं, गुरु हैं। साधु वैद्य पाए पिशाची पलाया जाए, शास्त्र कहते पिशाची मीन माया। जब आपके पास साधु रूपी डॉक्टर है तो माया क्या करेगी, भागेगी। तो उसी जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है वो माँ के साथ बड़ा कनेक्ट रहता है उस नाल के साथ, तो डॉक्टर उसको काटता है, उसी प्रकार से साधु गुरु क्या करते हैं, हमारा इस शरीर के साथ आसक्ति है, अटैचमेंट है, अज्ञानता है, हाँ, इसको काट देते हैं और क्या करते हैं, हमें रिलीज करते हैं, छुड़वा देते हैं, मुक्त करते हैं। हाँ, जीव को इस भौतिक जगत से जो गुरु है, साधु है, वो मुक्त कराते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं दीक्षा का अर्थ है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, रिसीव करना, और शरीर के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको क्या करना, काटना। दिव्य मीन्स दिव्य ज्ञान, क्षा मीन्स क्षति करना, अज्ञानता की क्षति इस प्रकार से हो सकती है। और यदि ये हो नहीं रहा है, दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो प्रैक्टिस करने वाला साधक है वो इनसफिशियंट नॉलेज, क्या कहेंगे,
ज्ञान बहुत कम है,
हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है ठीक ढंग से, और उस ज्ञान को वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है, ये उसकी कमी है। इसी कारण से जब तक ये चीजें नहीं होगी, क्यों दीक्षा लेने के बाद भी ये कमी रह जाती है, हम अटैच रह जाते हैं अपने भौतिकता के प्रति, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शरणागति की कमी है। गुरु के प्रति जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान जो वो प्राप्त कर रहा है, नॉलेज, वो उसको रियलाइज नहीं होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हाँ, वो दिव्य ज्ञान जब वो प्राप्त करता है और उसको वो अनुभव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि वो केवल नाम के लिए क्या है, शिष्य बना हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना नाम के लिए बस, जैसे कई बार हम देखते हैं कई लोग होते हैं जब बड़ा बड़ा फेस्टिवल आता है जन्माष्टमी, तो माला गले में डाल के आते हैं, उसे क्या है मंदिर में फ्री एंट्री मिल जाता है कि ये भक्त है, रेगुलर मंदिर आते, इतना बड़ा मंदिर है कौन किसको पहचानता है। लेकिन लाइसेंस एक ही है, तिलक और माला। आप इजीली अंदर जहां मर्जी घुस सकते हो मंदिर के किसी भी गेट से, यहाँ से वहां से। तो इस प्रकार से ऐसे जो शिष्य है वो यथावत वैसे ही बने रहेंगे। तो क्यों, ये परिवर्तन तभी संभव है जब दीक्षा के बाद भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो हम शरणागत नहीं होते हाँ, क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्र भाव है। कौन सा भाव है? हाँ, भगवत सेवा का भाव नहीं है, स्वतंत्रता का भावना है, स्वतंत्र रहना चाहता है। इस संसार में लोग सब कुछ त्याग सकते हैं, महान महान ऋषि मुनि साधु बड़े बड़े त्यागी वैरागी हैं, वो अपना घर त्यागेंगे, खाना त्यागेंगे, भोग करने की प्रवृत्ति को त्यागेंगे, निर्वस्त्र रह जाएंगे, लेकिन एक चीज को नहीं त्यागेंगे, वो है स्वतंत्रता। आसक्ति तो त्याग दी उन्होंने, कुछ तो कपड़े भी त्याग देते हैं, कितने सारे कुंभ मेला में बाबाज होते हैं तो। लेकिन एक चीज ऐसे बड़े बड़े लोग भी, प्रहलाद महाराज इस चीज का चर्चा करते भागवतम में, इतना होने के बावजूद भी ऐसे लोग अपने जो स्वतंत्रता का भावना है इस भौतिक जगत में रहने का, उपभोग करने का, ये स्वतंत्र भाव को त्याग नहीं पाते, अपनी जो ये स्वतंत्रता है उसको त्यागते नहीं है। ऐसे बड़े बड़े साधु हैं जो अकेले रह जाएंगे हिमालयाज में वहां, लेकिन बीच में उनको रहना बड़ा कठिन है। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन में रहना इतना कठिन है उस व्यक्ति से भी जो हिमालय में गुफाओं में जाके रहता है, उससे भी ज्यादा कठिन क्या है, इस्कॉन में भक्तों के बीच में रहना। वहां तो वह एक गाजर खा के रह सकता है, ठंड में गर्मी में पानी पी के रह जाएगा, मड़ खा के रह जाएगा, लेकिन इस्कॉन में रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका जो फॉल्स ईगो है, वहां तो उसका फॉल्स ईगो का गुब्बारा बढ़ रहा है। फॉल्स ईगो जो मिथ्या अहंकार की भावना है, मय का जो भाव है, वो एक गुब्बारे के भांति है, और धीरे धीरे क्या होता है, गुब्बारा फूकता है। वहां कोई पिन मारने वाला नहीं है, है कि नहीं? तो आपने अकेला राजा है वहां हिमालय में गुफा में प्लेट लेके। लेकिन यहाँ आप जब भक्तों के बीच में हो तो आपका जो मिथ्या अहंकार है, जिसके कारण हम अपने आप को स्वामी मालिक, ये जो बॉस बनने का भावना, ये इतना बढ़ जाता है, तो यहाँ भक्त लोग हमें क्या करते, फिर पिंच करते रहते हैं, हमारे फॉल्स ईगो को ठेच लगती है। प्रभु जी आप ठीक से जप नहीं कर रहे हैं, कई दिनों से आप प्रोग्राम में समय से नहीं आ रहे हैं। तो कई सारी चीजें इससे क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं, ठेच लगता है कि नहीं आपको? कोई माता जी या प्रभु जी आपको कहते होंगे, आप कई वेनसडे से आए नहीं है, फिर कभी फोन करेंगे तो आपको थोड़ा ठेच महसूस होगा। तो ये मिथ्या अहंकार ही हमारा ये है। जिस प्रकार से माँ से हम कनेक्ट होते उस नाल से, तो उसी प्रकार से ये जो मिथ्या अहंकार की जो भावना है, जिसके कारण हम इन शरीर से आसक्त हो गए हैं, इस भौतिक जगत से आसक्त हैं, और ये तभी संभव है जब इसको हम त्यागेंगे स्वतंत्रता के भाव को। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहा कि आपके कितने शिष्य हैं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि मेरे तो बस 2 या 3 ही शिष्य हैं, बाकी सारे फॉलोवर्स हैं। बाकी सारे क्या है? फॉलोवर्स है। शिष्य का मतलब ही है जिसने क्या त्याग दिया है, अपना जो फॉल्स ईगो की स्वतंत्रता का जो भाव है उसको त्यागा है। हाँ, तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम यदि इच्छा करते हैं, वांछा करते हैं, हाँ, तो इस चीज को समझते हुए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी कारण से भगवान अर्जुन को भगवद गीता बताए, और फिर अर्जुन आखिरी में क्या कहता है, करिष्ये वचनम तवा, कि हे कृष्णा आपने जो मुझे कहा है उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। क्योंकि ये भी नहीं है, व्यक्ति को लगता है दीक्षा हो गया मतलब मुझे आध्यात्मिक जगत का टिकट मिल गया, वैकुंठ का एंट्री टिकट मिला। मूवी में जाने के लिए एक टिकट मिलता है कि नहीं? डोर में खड़ा होता है, टिकट दे दो फिर आप 3 घंटे के लिए अंदर हो। तो आध्यात्मिक जगत जाने का किसी को लगता है कि बस दीक्षा हो गई या दीक्षा प्राप्त की, हाँ, तो हमें वो टिकट मिला, तो ये टिकट नहीं है, ये क्या है, शुरुआत है। या तो दीक्षा हमने प्राप्त की आध्यात्मिक गुरु से तो हमारा काम खत्म, अभी जो कुछ करना है वो कौन करेगा, गुरु करेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, माला करूंगा नहीं करूंगा, सेवा करूंगा नहीं करूंगा, नहीं। दीक्षा का मतलब है स्टार्ट, शुरुआत, अंत नहीं है, क्योंकि ये दीक्षा प्रोसेस हमारे अंत समय तक चलती है। जैसे किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, उसकी पहली योग्यता तो 10th क्लास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फिर 3-4 साल वो अपना स्टडी करेगा तो फाइनली वो डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं। कृष्ण दीक्षा शिक्षणम, और क्या है, विश्रम बेना, गुरु की सेवा और वैष्णव जो साधुगण है उनके पद चिन्हों का अनुसरण। हाँ, तभी व्यक्ति ये जो दीक्षा की जो प्रोसेस है वो खत्म हो सकती है। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो किसी के धन या उनसे रिस्पेक्ट आदि इस चीज के लिए लालायित नहीं होते। गुरु तब देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना अधिक अपना ये स्वतंत्रता का भाव है कितना अधिक समर्पित किया, वो चीज मायने रखती है, और वो शरणागति का लक्षण है, वो आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उस समय दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, उनके सामने प्रवचन चल रहा है और बीच में बात कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने डांटा कि आप अपने आप को क्या समझते हो, कृष्ण कथा हो रही है और उस समय आप बात कर रहे हो, आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं हर महीने आपके मठ को इतना डोनेशन देता हूँ, आपको इसका अहंकार हो रहा है जिसके कारण आप बीच में क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो। उन्होंने डांटा वो जो व्यक्ति, और वो प्रभुपाद ही थे, अपने युवा अवस्था में वो बात करने वाले कौन थे, प्रभुपाद थे। प्रभुपाद ने कहा बाबू, उन्होंने कहा बंगला में कहा कि आपको क्या लगता है कि एवरी महीने इलाहाबाद के गौड़िया मठ को आप इतना डोनेशन देते हो, इसका मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो कृष्ण कथा के बीच में। तो बिल्कुल ये हो गए, सावधान हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि असली जो शरणागति है गुरु के प्रति, वो है जो ये स्वतंत्रता की जो भावना है उसको हमने कितना त्यागा है। तो गुरु से हम जो दीक्षा प्राप्त करते हैं उसका मतलब ही है कि ये शरणागति की प्रोसेस अभी शुरू हुई है, क्योंकि शरणागति की प्रोसेस ऐसे नहीं कि अभी खत्म हो गई, शरणागति तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे सांस लेते हैं हम ऐसे कि आज का जो सांस लेने का कोटा है वो सुबह मैंने कंप्लीट किया, अभी दिन में सांस नहीं लूंगा, ऐसा होता है नहीं है। उसी प्रकार से शरणागति जो सरेंडर का भावना है वो खत्म नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सरेंडर। हाँ, जब तक हमारे इसमें सांस है तब तक ये लंबा टास्क है हमें शरणागत होने का। तो इसलिए ये दीक्षा प्रोसेस भी लॉन्ग है कि आध्यात्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त करना, और साथ साथ जो कर्मास के रिएक्शन है अविद्या की जो रिएक्शन से वो खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमें भूख लगता है तो हम भोजन खाते हैं तो हमारा भूख खत्म हो जाता है और हमें शक्ति मिलती है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उसको अनुभव करते हैं और गुरु की सेवा में लगते हैं, तो ये जो दीक्षा का प्रोसेस है ये पूर्ण होता है। इसी कारण से व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण संदेश शास्त्रों में दिया गया है कि व्यक्ति को गुरु को अप्रोच करना चाहिए, और गुरु को अप्रोच करके अपना ये जो अज्ञानता है उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के द्वारा। हाँ, दीक्षा का मतलब है कि नया जीवन, नया जन्म। पहला जन्म हम किससे ग्रहण करते हैं, माता पिता से, और दूसरा जन्म हम ग्रहण करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से। तो नया जन्म का मतलब नया माता पिता होना चाहिए, नया नाम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नया जन्म होता है तो आपका इस जन्म की सारी चीजें थोड़ी होती है। नया जन्म का मतलब नया माता पिता, नए विचार, नए एक्टिविटीज, नए एंगेजमेंट्स, नए फ्रेंड्स, नया नाम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया फैमिली। कौन सा फैमिली हमारा, हरे कृष्ण फैमिली, और नया फॉल्स ईगो नहीं, असली ईगो। नया अहंकार क्या है, कृष्णदास। जैसे मैंने कहा होगा, प्रभुपाद जब चल रहे थे एक बार अपना वॉकिंग स्टिक हाथ में रख के चलते चलते प्रभुपाद को कोई एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बड़ा सेना तान के चल रहे हो, भक्तों को बड़ा ऐसे विनम्रता से चलना चाहिए। आप बड़े घमंडी हो, घमंड भी लगते हो। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मुझे घमंड है, अहंकार है कि चीज का मैं कौन हूँ, कृष्ण दास हूँ। तो दीक्षा का मतलब ही है कि नया जन्म, तो फिर उसके लिए नई चीजें भी तो होनी चाहिए, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पत्नी दो बच्चे बस, लेकिन हरे कृष्ण फैमिली मीन्स बड़ा परिवार है आपका, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके लिए सर्विसेज करनी होगी, कृष्ण भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, नए कार्य करने पड़ेंगे, नए फ्रेंड्स। अभी बचपन से लेके वही भौतिक फ्रेंड होते हैं जो आर निद्रा भय और इन सब चीजों के चर्चा में मग्न है। नए फ्रेंड कौन है, कृष्ण भक्त जो कृष्ण के डिवोटीज है अराउंड द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से नया जन्म, और ये नया जन्म किसके लिए है, गुरु और कृष्ण के लिए है। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं, मैं जस्ट फाइनल श्लोकास पढ़ता हूँ। हाँ, इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, सोई काले कृष्ण तारे करे आत्म साम। दीक्षा काले, दीक्षा के समय भक्त करे आत्म समर्पण, समर्पण करता है गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, जब कृष्ण देखते कि ओ इसने दीक्षा ग्रहण की है, इसने आत्मसमर्पण किया, कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं, कृष्ण फिर उसके प्रति ध्यान देना शुरू करते हैं, कृष्ण उस व्यक्ति के लिए अटेंटिव हो जाते हैं। तो इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, दीक्षा का जो चर्चा है अगले वेंसडे थोड़ा, और फिर अगले वेंसडे हम गुरु के जो क्वालिफिकेशन आदि है, वास्तविक गुरु कौन है, इस भौतिक जगत के जो मिथ्या गुरु है उनके क्या लक्षण है, उन चीजों की हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो सीधा बैठिए आप, हाथ ऊपर, जोर से सांस लीजिए और बहुत ऊंची आवाज में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम संकीर्तन के श्री श्रीराध पार्थ सारथी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के निताय गौर प्रेमानंदी
इनके सर्वसाक्षी प्रभु जी की।
किसी भी वही समक्ष प्रश्न, थर्ड क्या, अच्छा कृष्ण दीक्षा, पहला है, पहला क्या है, गुरु पादाश्रय, दूसरा क्या है कृष्ण दीक्षा, और तीसरा है कृष्ण शिक्षा। हाँ लर्निंग, कृष्ण शिक्षा ग्रहण करना। हाँ तो वो ऑथोराइज नहीं है, उनके लिए यही बताना चाहिए कि यदि उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया है, और दीक्षा वहां से ग्रहण करनी होती है जो परंपरा में हो, चार संप्रदाय में, हाँ तो उनके लिए यही कहना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, नया दीक्षा उनको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, गलत मार्ग में गए हैं, तो उनको री इनिशिएशन कंपल्सरी है। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा से शुरू होता है, कृष्ण ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया और ये इस्कॉन उस परंपरा में आता है। दूसरा है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी से जो शुरू हुआ। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, शिव जी से। और चौथा है कुमार, जो ब्रह्मा के चार पुत्र है। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फलामता, आदि पुराण में तो इतना वर्णन है कि इन चार संप्रदायों को छोड़कर जो मंत्र ग्रहण करता है वो निष्फल है उस व्यक्ति का कार्य, मंत्र आदि। तो इसलिए व्यक्ति को इन चार ऑथेंटिक संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को अनऑथराइज स्कूल में थोड़ी भेजते हैं क्या, नहीं, ऑथराइज हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी ये महत्वपूर्ण है कि ऑथराइज संप्रदाय में जाना। संप्रदाय का मतलब है कि सम्यक रूप से जो कृष्ण डिलीवर कर सकते हैं हमें, सम्यक रूप से कृष्ण हमें प्रदान कर सकते हैं, वो संप्रदाय है। हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद के जय।
हरे कृष्ण
ऑथेंटिक ऑथेंटिक संप्रदाय है तो वो ठीक है।
हरे कृष्ण किसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बाद में प्रसाद के साथ साथ क्योंकि समय का भाव है तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो कि हमको बोध कलम में